mercy, Savior. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayayanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahuram. Jainiha Kasaya Pahura. Manayanaya Mujjalam Anantatham. Gahahi Vivariyam Tam. गुणधर भडारयम वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता हैं गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दूसरी पुस्तक जो द्वितीय अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति नामक, उसमें मूल प्रकृति की बात हम देख रहे थे और उसमें अभी हमने काल देखना चालू किया है। क्षेत्र और स्पर्श की बात हो गई है। ये काल अनुगम जो है वो नाना जीवों की अपेक्षा काल बता रहे हैं। तो नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य कथन करेंगे ओघ से, तो मोह के विभक्ति वाले भी जीव है और अविभक्ति वाले भी है। तो कितने हैं काल बताना है ना उनको, तो सदा काल है। तो फिर मार्गणाओं में उसकी बात हम देख रहे थे। तो मार्गणा में जो हम देखते कि जहां जहां मनुष्य की बात आती वहां विभक्ति वाले भी है और अविभक्ति वाले भी है। तो सामान्य मनुष्यों में भी घटाते हैं, पर्याप्त मनुष्यों में घटाते हैं, मनुष्य नियम में घटाते हैं। अन्य मार्गणाओं में पंचेंद्रियों में भी विभक्ति वाले अविभक्ति वाले सदाकाल है, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में भी सदाकाल है, त्रस में भी सदाकाल है, त्रस पर्याप्तों में भी सदाकाल है। इस तरह से जहां जहां जिन मार्गणाओं में मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त पाए जाते हैं उनको वहां उसमें विभक्ति वाले भी और अविभक्ति वाले भी सदा है, ये बात घटित होती है। अब जो सांतर मार्गणाएं हैं कि जहां सदा काल नहीं जीव पाए जाते उसकी बात यहां चल रही, तो उसमें काल बताएंगे नाना जीवों की अपेक्षा काल। तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में तो विभक्ति वाले ही हो गए, परंतु नाना जीवों की अपेक्षा काल घटित करना है तो जघन्य में जघन्य कितना काल होगा। तो कोई जीव उसमें जन्मता है तो अंतर्मूर्त उसका क्षुद्रभव ग्रहण इतना तो काल उसमें बिताएगा, तो उतने काल तक तो वहां जीव पाया जाएगा, एक समय तो घटित नहीं होगा। यानी क्या ना देखो, ये लब्धि अपर्याप्तक जो है जघन्य काल अंतिम लाइन है 71 पृष्ठ की, अंतिम लाइन जगन्य काल खुदना भव ग्रहण प्रमाण 71 पृष्ठ पर। आज हमें पढ़ना है 73 पृष्ठ से, पर 71 पृष्ठ पर लास्ट लाइन जो है उसमें लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों में नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल खुदना भव ग्रहण और उत्कृष्ट काल, लगातार कोई ना कोई जीव उसमें जन्मता रहे तो पल्ल्य के असंख्यातवे भाग काल तक होता है। अंतर भी एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग तक होता है। वो अंतर की बात आएगी अंतर में, अभी तो काल लगातार काल की बात चल रही है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर भी पड़ सकता है, जैसे अभी हमने देखा पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक लगातार लब्धि अपर्याप्तकों में उत्पन्न होते रहेंगे, बाद में अंतर पड़ेगा। तो अंतर भी कितना हो सकता है, तो एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक। उस उतने काल में वो कहां कोई नहीं होगा उसमें। अब असत्य और उभय जो है वो तो सर्वत्र पाए जाते 12वें तक, तो उसमें विभक्ति वाले भी हो गए अविभक्ति वाले भी हो गए, परंतु अविभक्ति वाले जो है उसमें विभक्ति वाले तो सर्वदा होते हैं और अविभक्ति वाले उसमें तो अंतर पड़ता है। तो इसलिए अविभक्ति वाले जघन्य एक समय से लेकर योग की बात निकाली थी असत्य और उभय की, क्योंकि उस योग में था दसवें गुण स्थान में और उस योग काल का एक समय बाकी रहा तब बारहवें में आया और बारहवें में आने के बाद योग पलट गया तो एक समय घटित होता है। ये बात कल हमने देखी थी, उसका विशेष अर्थ भी कल हमने बहुत विस्तार से देखा था। अब यहाँ हम 73 पृष्ठ पर आते हैं अपगत वेदियों में। तो अपगत वेदी और मोह की विभक्ति कहाँ पर पाई जाएगी? अपगत वेदी और मोह की विभक्ति वाले, हाँ, 9वें के दूसरे भाग से लेकर 9वें, 10वें और 11वें। तो अभी वो तो सदाकाल नहीं पाए जाएंगे, श्रेणी के गुण स्थान। हर समय कोई जीव श्रेणी नहीं मान रहा है, तो बीच बीच में अंतर पे पड़ता है। तो काल आ गया, हमें यहाँ अंतर नहीं देखना है, काल देखना है। तो कोई जीव उसमें आता है तो जघन्य काल एक समय है, मोहनीय की अविभक्ति है और अपगत वेदी है। कैसे होगा? अपगत वेदी हुआ, विभक्ति वाला हुआ और मरण गए, उपशम श्रेणी में मरण हुआ। तो मरण हुआ तो फिर सवेद वाला हो गया वो, और मैंने अविभक्ति कहा ही नहीं, विभक्ति की बात चल रही है। मैंने क्या अपगत वेदी, हाँ, तो क्योंकि विभक्ति की बात चल रही थी ना, ग्यारहवें गुण स्थान तक कौन हो सकता है? विभक्ति वाला ही हो सकता है। हाँ, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा मोनीय अविभक्ति वाले अपगत वेदी जीव सर्वदा पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर के सारे अपगत बारहवें गुणस्थान को कभी कभी होगे, परंतु तेरहवें तो हमेशा ही है, चौदहवें और सिद्ध भी अपगत वेदी ही है, तो वो तो सदाकाल पाए जाएंगे। इसी प्रकार अकषाय और यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। यथाख्यात में भी तेरहवा गुणस्थान सदाकाल पाया जाता है, उस अपेक्षा यथाख्यात संयत अविभक्ति वाले भी सदाकाल पाए जाएंगे। विशेषण, उपशम श्रेणी की अपेक्षा अपगत वेदियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है तथा बारहवें गुणस्थान से लेकर ये एक समय वो तो मरण की अपेक्षा ही घटित हो तक। अपगत वेदी एक समय के लिए रहा और उत्कृष्ट काल अपगत वेदी उपशम श्रेणी में कितने काल तक अपगत वेदी रहा? अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अपगत वेदी हुआ, ग्यारहवें तक जाके फिर वापस लौटा, फिर सवेद वेद का उदय हो जाएगा, तो अंतर्मुहूर्त में हो जाता है वो। बारहवें गुणस्थान से लेकर आगे के सभी मोहनीय अविभक्ति वाले जीव अपगत वेदी होते हैं, इस अपेक्षा से इनका सर्वकाल कहा है, यानी तेरहवा गुणस्थान भी सदाकाल रहता है और सिद्ध भगवान भी। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी और संगी जीवों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव सर्वदा होते हैं। देखो ये इसकी बात देखते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, परिय, ज्ञानी, ये मोहनीय विभक्ति वाले, यानी हमेशा ही ये मन परिय ज्ञानी भी हमें, ये तो मति, श्रुत, अवधि तो समय दृष्टि है, चारों गति में होते हैं। कब कब होते हैं? हमेशा ही, नाना जीवों की अपेक्षा। मन परे ज्ञानी भी कोई न हो ऐसी बात नहीं हो सकती, तो मन परे ज्ञानी भी सदैव होते हैं। चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी भी हमेशा पाए जाएंगे, अवधिदर्शनी और संगी जीवों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव सर्वदा होते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ सभी ही हमेशा ही पाए जाएंगे तथा उक्त मार्गणाओं में मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। तो ये मार्गणा जो है उनमें अविभक्ति की बात है, यानी बारहवा गुणस्थान। क्यों? मतिशुत अवधि मन पर कहाँ तक हो गए? बारहवें तक हो गए। उसमें अविभक्ति वाले बारहवा गुणस्थान कभी कभी होगा, तो कभी कभी जहाँ होता है वहाँ जघन्य काल और उत्कृष्ट काल बताएंगे नाना जीवों की अपेक्षा। तो जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त, क्योंकि बारहवें गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है और वहाँ मरण नहीं है, जैसे उपशम श्रेणी में एक समय घटित किया था विभक्ति वालों में, वैसे यहाँ तो घटित नहीं होगा, तो अंतर्मूर्त तो होगा ही होगा, जगन्य और उत्कृष्ट काल। क्योंकि ये जो हमने देखे मति श्रुत अवधि मन परे और उसे चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और संगी, ये तो अरहंतों में घटित नहीं होता है, तो बारहवें का ही काल यहाँ ले लेना है। जगन्य और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त ही घटित होता है। उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि ये भी सांतर मार्गणाएं हैं, यानी हमेशा ही औपशमिक सम्यक दृष्टि पाए जाएंगे ऐसा नहीं है, उसमें भी अंतर पड़ता है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि जो गुणस्थान है, जैसे सासाधन है ऐसे सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, उसमें भी अंतर पड़ता है नाना जीवों की अपेक्षा से। तो मौन्य विभक्ति वालों का काल वैक्रिक मिश्र कायोगियों के समान है। कितना होगा? अंतर्मूर्त तो होगा ही, जघन्य कहो या उत्कृष्ट कहो। उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है? अंतर्मूर्त। और सम्यक मिथ्यात्व का? अंतर्मूर्त। और वहां मरण होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो उस अपेक्षा से तीनों में समानता है, वैकरिक मिश्र कहो, औपशमिक सम्यक्त्व कहो या सम्यक मिथ्यात्व कहो। ये सांतर मार्गणाएं हैं, सदाकाल वहां जीव नहीं पाए जाते हैं। जब पाए जाएंगे तो लगातार कितने समयों तक? अंतर्मूर्त तो लगातार कम से कम अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। पल्ले नाना जीवन की अपेक्षा पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक, बराबर। कल हमने देखा था ना वैकरिक मिश्र की बात, यहाँ 72 पृष्ठ पर देखे थे। उत्कृष्ट काल बराबर है, उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग। वैसे सासाधन समय दृष्टि, अब सासाधन को उसमें नहीं रखा है, उसका भी उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग होता है, परंतु जगन्य काल एक समय घटित होता है। सासाधन समय दृष्टि मोहनी विभक्ति वाले जीवों का जगन्य काल एक समय, क्योंकि सासाधन का ही जगन्य काल एक समय हो सकता है इसलिए। और यहाँ जो हमने वैकरिक मिश्र देखे, औपशमिक सम्यक्त्व देखे और सम्यक मिथ्यात्व देखे, उसका काल ही अंतर्मूर्त है और उस काल में मरण नहीं है, परंतु सासाधन में मोहन की विभक्ति वाले सासाधन का ही काल एक समय घटित हो सकता है इसलिए उसको यहाँ लिया। और उत्कृष्ट काल पल्यपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, नाना जीव लगातार सासाधन करते रहे, पल्य का असंख्यातवे भाग काल तक आते रहेंगे उसमें, फिर उसमें अंतर पड़ेगा ही नियम से। इतने काल तक बीच में नहीं अंतर हो तो यहाँ तो नियम से अंतर पड़ने वाला है। बाद में ऐसे समय आएगा कि वहाँ एक भी जीव सासाधन में नहीं होगा। तथा नरक गति और तीरंश गति आदि शेष मार्गणाओं की अपेक्षा मोनीय विभक्ति वाले जीव सर्वदा होते हैं। अन्य मार्गणाओं में तो हमेशा ही पाए जाएंगे, जहाँ जहाँ सांतर मार्गणाएं हैं और नाना जीवन की अपेक्षा अंतर पड़ सकता है वहीं पर यह काल बताया है, अन्य मार्गणाओं में सदा काल होता है। विशेषार्थ मति ज्ञान आदि मार्गणाओं में मौनीय विभक्ति वाले और मौनीय अविभक्ति वाले दोनों प्रकार के जीव होते हैं। मति ज्ञान आदि जो हमने देखे थे हाँ, तो बारहवें तक होते हैं, तो ग्यारहवें तक तो विभक्ति वाले कहेंगे और बारहवें में अविभक्ति वाले कहेंगे। उनमें से मोहनीय विभक्ति वाले जीव तो सर्वदा पाए जाते हैं, क्योंकि पहले गुणस्थान से लिए हमने तो सर्वदा ही होंगे। या मति ज्ञान में तो चौथे गुणस्थान से लेना, मति श्रुत अवधि मन परे वगैरह वगैरह, चक्षु अचक्षु दर्शन में तो पहले गुणस्थान से लेना, वो तो सदा काल पाए जाएंगे। पर मोहनीय अविभक्ति वाले जीव अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक पाए जाते हैं, क्योंकि 74 पृष्ठ नाना जीवों की अपेक्षा भी बारहवें गुणस्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही है। उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल वैकरिक मिश्र काय योगियों के काल के समान है। यानी जगन्य कितना देखा हमने? अंतर्मुखी और उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात्व अभाव। नाना जीवों की अपेक्षा सासाधन सम्यक दृष्टियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अतः सासाधन की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का उक्त काल कहा, यानी सासाधन सम्यक दृष्टियों का ही इतना काल है नाना जीवों की अपेक्षा, इसलिए सासाधनवित विभक्ति उतना ही काल होगा। ऊपर जिन मार्गणाओं का कथन कर आए उनसे अतिरिक्त नरक गति आदि प्रायः सभी मार्गणाओं में मोहनीय विभक्ति वाले ही जीव होते हैं तथा वे मार्गणाएं सर्वदा होती हैं, अतः उनमें रहने वाले मोहनीय विभक्ति वाले जीव का काल भी सर्वदा कहा है। इस प्रकार कालानुयोग द्वार समाप्त हुआ। एक काल की बात यहाँ समाप्त हो जाती है, अब अंतर की बात कहेंगे। अंतर यानी उस मार्गणा में अभी नाना जीवों की अपेक्षा कोई भी न जीव न हो, एक जीव की अपेक्षा अंतर कैसा कहते हैं हम, वह जीव उस गुणस्थान में था अन्यत्र गया और फिर वापस उस गुणस्थान में आया, वो एक जीव की अपेक्षा अंतर कहलाता है। और नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कब, उस गुणस्थान में कोई भी जीव न हो ऐसा बनेगा, वहां से लेकर दोबारा उस गुणस्थान में जीव कोई ना कोई जीव आएगा तो उसको हम अंतर कहेंगे। जैसे सासाधन में एक जीव की अपेक्षा अंतर कितना पड़ता है, कम से कम
बोलो
असंख्यात वर्ष एक जीव की अपेक्षा, क्योंकि एक बार औपशमिक सम्यक्त्व करके छूट गया, सासाधन में से गिर गया, सासाधन होकर मिथ्यात्व में गया, दोबारा औपशमिक सम्यक्त्व करने के लिए कितना काल चला जाता है, पल्ले के असंख्यात्व भाग इतना। उसके पहले वेदक सम्यक्त्व तो हो सकता है, औपशमिक नहीं हो सकता, इसलिए एक जीव की अपेक्षा एक बार सासाधन हुआ फिर दोबारा होने के लिए इतना काल बीच में चला जाता है। और अधिक से अधिक काल कितना लगेगा लक्ष्मी बहन, एक बार सासाधन हुआ दोबारा सासाधन होने के लिए मैक्सिमम काल कितना जाएगा, अंतर बीच का, वो तो मिनिमम अंतर हुआ। हाँ बोलो अशोक भाई। हाँ बहुत अच्छा, अर्ध पुद्गल, मंदा बहन ने भी कहा था अर्ध पुद्गल परावर्तन, क्योंकि वो जीव जिसने एक बार सम्यक तो हुआ है वही सासाधन में आएगा ना, तो मिथ्या तो में गया अभी वो, तो अधिक से अधिक कितना काल रुलेगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन, उतने काल में तो मोक्ष जाएगा, अभी उसके पहले उतना काल माइनस कर देना कि वो आएगा उपशमिक सम्यक्ति होगा फिर सासाधन में आएगा फिर दोबारा वो उपशम सम्यक ये वेदक करके जाएगा मुनि होकर मोक्ष भी चला जाएगा, आगे पूरा वहां तक का काल अर्धपुद्गल परावर्तन, कुछ कम करना उसमें से, तो इतना सासाधन में अंतर पड़ सकता है एक जीव की अपेक्षा हम देख रहे हैं। अब यहां हमको नाना जीवों की अपेक्षा देखना है, एक जीव और नाना जीव में फर्क समझ में है। हाँ अब हम पढ़ेंगे आप अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, 74 पृष्ठ चल रहे हैं भाई 74। काल अनुयोग द्वार हुआ अपना, अभी अंतर देख रहे हैं, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीवों का अंतर काल नहीं है। क्यों नहीं है, सामान्य कथन क्या, विभक्ति वाले भी जीव सदा काल पाए जाएंगे और अविभक्ति वाले भी सदा काल पाए जाएंगे, तो सामान्य अगर कथन करना है तो उसमें अंतर ही नहीं है क्योंकि वे सर्वदा पाए जाते हैं। इसी प्रकार सामान्य पर्याप्त और मनुष्यनी, ये तीन प्रकार के मनुष्य, जैसे हमने काल में क्या देखा था, इनका सदा काल होता है, विभक्ति वाले भी सदा काल होते हैं अविभक्ति वाले भी सदा काल, तो मनुष्य अविभक्ति वाले सदा काल होते हैं। हाँ जयाबेन अभी आप नहीं थे ना काल में, मनुष्य या मनुष्यनी या जो पर्याप्त मनुष्य अविभक्ति वाले सदा काल होते हैं, तो वहां कौन से गुणस्थान की बात चल रही है, बहुत अच्छा 13वें गुणस्थान की, क्योंकि 12वां कभी कभी होगा 14वां कभी कभी होगा मगर 13वां तो हमेशा ही पाया जाता है। तो अभी जो मनुष्य की अपेक्षा अन्य जो मार्गणाएं हैं, इसलिए आगे कहते हैं पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, सामान्य, सत्य और अनुभव, ये तीन मनोयोगी, क्योंकि सहयोगी में भी ये है ना मनोयोग, कौन से? सत्य और अनुभव, और ये ही तीन वचन योगी, काय योगी, अभी काय योगी में भेद नहीं किया, काय योगी इतना ही लिखा है, औदारिक काय योगी, संयत, शुक्ल लेशा वाले, भव्य, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, आहारक और अनाहारक जीवों के कथन करना चाहिए। क्या कथन करना चाहिए? कि इनमें मोहनीय विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं, अंतर नहीं है। काल में भी हमने यही कहा था, सदा काल पाए जाते हैं, वो काल बताया। अनाहारक, अनाहारक में सिद्धों को लेना है, अविभक्ति वाले अनाहारक। काल में भी हमने यही कथन देखा था, सदा काल पाए जाते हैं, और यहाँ क्या कहते हैं? अंतर नहीं है। अंतर नहीं का अर्थ होता है हमेशा रहते हैं। अब मार्गणाओं में यहाँ देखेंगे, आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का अंतर काल नहीं है, क्योंकि हमेशा ही वो नारकी पाए जाएंगे। इसी प्रकार सभी नारकी, सभी तिर्यंच, सभी देव, सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, त्रस लब्धि अपर्याप्त, पांचों स्थावर काय, वैक्रिय काय योगी, तीनों वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, यानी जिनमें विभक्ति वाले हैं और सदाकाल पाए जाते हैं, ऐसी सभी मार्गणाएं ले ली। तीन अज्ञानी, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, ये हमेशा ही पाए जाएंगे। नाना जीवों की अपेक्षा की बात चल, संयता संयत, असंयत, कृष्णादि पांच लेशा वाले, देखो शुक्ल लेशा वाले हमेशा है, उसमें विभक्ति वाले भी है, परंतु उनमें दोनों ही ऑप्शन है, अविभक्ति वाले भी है सदाकाल, इसलिए यहाँ ऐसे लिए है कि जहाँ विभक्ति वाले ही पाए जाते हैं और सदाकाल पाए जाते, अविभक्ति वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। अभव्य, वेदक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए। तात्पर्य है कि इन मार्गणाओं में जीव निरंतर पाए जाते हैं और वे मोहयुक्त ही है। इनमें से जिनको जिनको छोड़ा, जैसे अभी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त को लिया, पर्याप्त को छोड़ा, तो पर्याप्तों में विभक्ति वाले भी पाए जाते और अविभक्ति वाले भी पाए जाते, इसलिए उसको छोड़ा है। अतः इनमें मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है, यानी वो सदैव पाए जाते हैं। अब जहां अंतर पाया जाते जाता है, वहां कितना अंतर होगा? पहले में पहले विभक्ति वाले और अंतर नहीं है, यानी हमेशा ही जीव उसमें पाए जाते हैं, नाना जीव, ऐसी मार्गणा भी बताई। अब ऐसी मार्गणा बताएंगे जहां अंतर पड़ सकता है, तो अंतर ने गैप पड़ेगा, उसमें एक भी जीव नहीं है, ऐसी पोजिशन आएगी, तो कम से कम अंतर कितना हो सकता है और अधिक से अधिक अंतर कितना हो सकता है, उसकी बात अब बताएंगे। लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में मोहनीय विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर काल एक समय है। अभी काल की बात नहीं, अंतर की बात चल रही है, यानी एक समय के लिए कोई भी मनुष्य नहीं है लब्धि अपर्याप्त, ऐसा हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर काल पल्लोपम के असंख्यात विभाग है। हमने काल कितना देखा था देवेंद्र भाई, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, नाना जीवों की अपेक्षा, कौन सा अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट, एक जीव की बात नहीं चल रही, यहाँ नाना जीवों की बात चल रही। अश्विन भाई याद है? हाँ, क्षुद्र भोग्रहण, कम से कम काल है क्षुद्र भोग्रहण, और अधिक से अधिक काल है वो पल्ले का असंख्यात अभाव। अब यहाँ अंतर की बात कर रहे हैं, अंतर पड़ गया बीच में तो एक समय का पड़ सकता है, एक समय के लिए कोई भी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य न हो, और अधिक से अधिक कितना काल जाएगा, तो पल्ले का असंख्यात विभाग उतना। इसी प्रकार सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का कहना चाहिए, अर्थात ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। एक जीव में इतना अंतर एक समय वाला घटित नहीं होगा कि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में कोई जीव था और दूसरे गुणस्थान में चला गया और एक समय में वापस आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। एक जीव में कितना अंतर होगा? अंतर मुहूर्त तो चाहिए मिनिमम, कि तीसरे में से पहले में गया या चौथे में से मैं गया और फिर वापस उसमें आया, तो उसके लिए अंतर मुहूर्त तो चाहिए। एक एक समय में वहाँ गुणस्थान ऐसा नहीं बदलेगा तीसरे के लिए। यहाँ अनेक जीवों की अपेक्षा चल रही बात, तो नाना जीवों की अपेक्षा कम से कम अंतर एक समय और अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात अभाव, यानी ये तीनों मार्गणाओं में यही एक समय कम से कम और अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात अभाव। कौन से तीन मार्गणा देखी लक्ष्मीबेन? लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, सासाधन और सम्यक मिथ्या। इन तीनों मार्गणाओं का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अतः इन मार्गणाओं की अपेक्षा मुनि विभक्ति वाले जीवों का भी उक्त अंतरकाल कहा है। इनमें सारे विभक्ति वाले ही पाए जाते हैं, तो विभक्ति वालों का भी उतना ही होगा जो सामान्य से कथन करेंगे। असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचन योगियों में हमने पहले कौन से दिए देखे थे कि जिसमें विभक्ति और अविभक्ति दोनों हैं? हाँ, सत्य और अनुभय, और सामान्य तो उसमें लगा उसके साथ। यहाँ असत्य और उभय देखे, तो असत्य और उभय में विभक्ति वाले ही होते कि अविभक्ति वाले भी होते हैं? विभक्ति वाले तो सदाकाल पाए जाएंगे असत्य और उभय में। असत्य और उभय होते हुए अविभक्ति वाले हैं, ऐसे कौन से जीव है? बारहवें गुणस्थान वाले, तो उसमें अंतर पड़ सकता है, अभी उसका अंतर बताएंगे। असत्य और उभय इन दो मनोयोगी और इन्हीं दो वचन योगियों में मोनीय विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो सदाकाल पाए जाएंगे। पहले गुणस्थान से होते ना 11वें तक तो विभक्ति वाले, और वो सदाकाल होंगे क्योंकि वे निरंतर पाए जाते हैं। तथा मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है। शपक श्रेणी का यही अंतरकाल है ना वहां पर। इसी प्रकार मति ज्ञानी कॉमा लगाना, श्रुतक ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और संगी जीवों के कहना चाहिए। ये जो मति, श्रुत, चक्षु, अचक्षु, संगी जो है, विभक्ति वाले तो सदाकाल है और अविभक्ति वालों में अंतर पड़ेगा कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 महीने। विशेषार्थ, ऊपर जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं 12वें गुणस्थान तक पाई जाती हैं और 12वां गुणस्थान सांतर है। सांतर यानी जिसमें अंतर पड़ सकता है, उसका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। अतः इन मार्गणाओं में भी मोनीय अविभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना कहा है। यानी 6 महीने के बाद कोई ना कोई उसमें आएगा ही। हाँ, यहाँ आपका कहना है यहाँ अवधि मन परे ज्ञान छोड़ा है, क्योंकि अवधि के साथ 12वें में ऐसी बात है ना, और मन परे के साथ 12वें में 12वां जनरल बात है। 12वां गुणस्थान का अंतर अधिक से अधिक 6 महीना है। अवधि के साथ 12वां अगर लेना है तो उसका अंतर अधिक भी घटित हो सकता है। हाँ, औदारिक मिश्र का योगी जीवों में, ये औदारिक मिश्र में विभक्ति वाले हमेशा होगे कि नहीं होगे? नाना जीव होगे ना, पूरा लोक भरा है। हाँ, और औदारिक मिश्र और अविभक्ति वाले कब होते हैं? हाँ जयाबेन, हाँ समुद्घात में। कौन सा समुद्घात? कपाट। क्या वो हर समय जीव कोई ना कोई समुद्घात करता है? भरे तेरवा गुणस्थान हमेशा है, परंतु समुद्घात करने वाले तो निरंतर नहीं पाए जाते, तो उसमें अंतर पड़ सकता है। तो अंतर हो सकता है, तो औदारिक मिश्र का योगी जीवों में मोनी विभक्ति वाले जीवों का अंतर नहीं है, विभक्ति वालों का, वे निरंतर पाए जाते हैं। तथा मोनी अविभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय के लिए कोई नहीं था और फिर दोबारा कोई ना कोई जीव कपाट समुद्घात में आ गया, तो एक समय। और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, पृथक्त्व वर्ष ने 3 से 9 हम कहेंगे पृथक्त्व वर्ष, तो उतने काल में कोई ना कोई जीव समुद्घात करेगा ही, केवली समुद्घात। अधिक से अधिक अंतर पड़ेगा तो इतना काल तक पड़ेगा, 3 से 9 उसको पृथक्त्व कहते हैं, कुछ वर्ष ऐसा लेना। अनेक के लिए पृथक्त्व शब्द आता है, यानी कुछ वर्षों का वहां अंतर पड़ेगा। इसी प्रकार कार्मण का योगी में क्या है? विभक्ति वाले सदाकाल, और अविभक्ति वाले में अंतर पड़ेगा। हाँ, अवधि कोई भी न हो ऐसा जीव एक समय, और अधिक से अधिक वो वर्ष पृथक्त्व होगा। इसी प्रकार कार्मण का योगी अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी और अवधि दर्शनी जीवों के कहना चाहिए, उनमें भी यही बात लागू होती है। हमने वो मति श्रुत को रखा था और अवधि मन परे को नहीं लिया था, तो इसका अर्थ क्या है? अवधि ज्ञान सहित 12वां गुणस्थान। देखो, मति श्रुत ज्ञान तो होता है 12वें गुणस्थान तक, तो 12वें गुणस्थान का अधिक से अधिक अंतर उत्कृष्ट अंतर 6 महीना देखा था, परंतु अवधि ज्ञान सहित 12वें में आने वाले के अंतर कितना पड़ सकता है? वर्ष पृथक्त्व। मन परे ज्ञान सहित 12वें में आने वाले वर्ष पृथक्त्व, इतना उसमें अंतर हो सकता है। विशेषात उपर्युक्त मार्गणाओं में मोहनीय विभक्ति वाले जीव सर्वदा पाए जाते हैं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की अपेक्षा यह हमेशा ही है ना, वहां पर अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन का असंयतादि 4 गुणस्थानों की अपेक्षा, क्योंकि ये तो जो 4 गुणस्थान है, 4वां 5वां 6वां 7वां, ये तो निरंतर गुणस्थान है, और अवधि ज्ञानी और मन परे ज्ञानी भी हमेशा ही पाए जाते हैं। तथा मन परे ज्ञान का प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी 6वें 7वें गुणस्थान में, 6वां 7वां गुणस्थान तो निरंतर है ही है, उनमें भी कोई ना कोई तो मन परे ज्ञानी मुनि हमेशा ही पाए जाएंगे। अतः उक्त मार्गणाओं में मोहनीय विभक्ति वाले जीव सर्वदा है, तथा औदारिक मिश्र और कार्मण का योग में मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का जो जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व बतलाया है, उसका कारण यह है कि मोहनीय विभक्ति से रहित 13वें गुणस्थान वाले जीवों के कपाट समुद्घात के समय औदारिक मिश्र का योग और प्रत तथा लोकपूरण समुद्घात के समय कार्मण का योग होता है, और इनका जघन्य अंतर, अभी यहाँ अंतर की बात चल रही, काल की नहीं, जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व कहा है। थोड़ा याद करते इनका नाना जीवों के काल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, याद है देवेंद्र भाई? काल की बात किसकी? नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रही है, औदारिक मिश्र का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल नाना जीवों की अपेक्षा, अविभक्ति के जघन्य कितना है? 8 समय, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट संख्यात समय, और कार्मण का मिनिमम 3 समय और उत्कृष्ट संख्यात समय। अतः इन दोनों योगों की अपेक्षा, यहाँ अंतर की बात चल रही, इन दोनों योगों की अपेक्षा मौनी अविभक्ति वाले जीवों का भी उक्त अंतर प्राप्त होता है। उक्त अंतर कितना देखा अभी हमने, एक समय जघन्य और उत्कृष्ट वर्ष पृथक, तथा अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन और मन परे ज्ञान के साथ चारों क्षपकों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है, यानी सभी क्षपक के सभी गुण स्थानों में यह अंतर घटित होता है। कुछ वर्ष, कुछ कोई नहीं है, मन परे ज्ञान के साथ बारवा, सामान्य से बारहवें गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर छह महीना है, परंतु अवधि ज्ञान सहित बारहवें में आने वाले में अंतर पड़ सकता है, तो अधिक से अधिक अंतर कितना हो सकता है, तो वर्ष पृथक। मन परिज्ञान के बारे में भी यही, इन चारों क्षपकों में क्षीण कषाय गुणस्थान भी सम्मिलित है, अतः अवधि ज्ञान आदि उक्त तीन मार्गणाओं की अपेक्षा मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का भी उक्त अंतर प्राप्त होता है। ख्याल में आए? वैक्रेक मिश्र का योगी मौनी विभक्ति वाले जीवों का, ये मिश्र का योगी जो है वैक्रेक मिश्र, वो उन्होंने सामान्य कथन कर दिया है। हा? नहीं नहीं, क्षपक गुण, क्षपक श्रेणी का अंतर कितना है, तो कम से कम एक समय है, और उत्कृष्ट कितना है, ये क्षपक श्रेणी के लिए छह महीने का, और इन गुणस्थानों के साथ, इन मार्गणाओं के साथ, यहाँ लिखा ना, अविभक्ति का नहीं लेना, चार क्षपक आते हैं क्या अविभक्ति में, चार क्षपकों का अंतर बता रहे हैं। आप क्यों घोटाला कर रहे हैं, ऊपर जो बताए हैं अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हमेशा पाया जाएगा कि नहीं जाएगा, मन परे ज्ञान हमेशा होगा कि नहीं होगा, कौन से गुणस्थानों में होगा हमेशा, हाँ तो मन परे ज्ञान जिन जीवों का है वो क्या निरंतर श्रेणी मानने वाले कोई ना कोई जीव होगे कि नहीं होगे, अरे श्रेणी ही निरंतर नहीं होती, तो मन परे ज्ञान के साथ श्रेणी निरंतर कैसे होगी, ख्याल में आता है ना। तो ये निरंतर जो कहा है, मन परे ज्ञान विभक्ति वाले निरंतर है, किस गुणस्थान की अपेक्षा होगा, छठा सातवा। अवधि ज्ञान निरंतर है विभक्ति वालों में, कौन सा गुणस्थान है, चार से सात, समझ में आया इसका अर्थ। अब यहां जो बता रहे हैं, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान और अविभक्ति बारवा गुणस्थान, उसमें जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक, तो यहां बात बता रहे हैं कि क्षपक गुणस्थानों का ही अंतर कितना होता है, क्षपक गुणस्थानों का, क्षपक गुणस्थान कहां से कहां तक है, हाँ तो आठ नौ दस और बारह, तो अवधि ज्ञानी या मन परे ज्ञानी और क्षपक कोई भी गुणस्थान ले लो, उसमें यही अंतर घटित होता है। वहां विभक्ति अभिव्यक्ति की चर्चा नहीं थी, क्षपक में मन परे ज्ञान आठवें नौवे की भी बात करेंगे तो भी वहां अंतर होगा कि नहीं होगा कि निरंतर हो गए, अवधि मन परे ज्ञानी के साथ आठवां नौवां दसवां या बारहवां कोई भी गुणस्थान हो, अंतर तो उतना ही होगा, वर्ष पृथक्त्व का अंतर होगा, यही बात यहां बताई है। देखो फिर पढ़ती हूँ मैं, इन चारों क्षपकों में, इन चारों क्षपक यानी कौन से, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के साथ चारों क्षपक, जिनको ऐसे ये दोनों ज्ञान है और जो क्षपक श्रेणी मानते हैं ऐसे नाना जीवों की अपेक्षा, वहां अंतर पड़ेगा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथक, यानी एक समय के लिए चारों ही गुणस्थानों में कोई भी जीव नहीं था और फिर कोई भी एक या अनेक जीव उसमें आ गए तो अंतर समाप्त हुआ, एक समय में अंतर समाप्त हुआ, या कोई भी जीव इन चारों ही गुणस्थानों में नहीं है और अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व काल बीत गया और फिर अवधि या मनपरे के साथ उसमें कोई आया तो उसको कहेंगे वर्ष पृथक तो अंतर है। ख्याल आया अभी? हाँ अभी आ गया। वैकृत मिश्र की बात चलेगी अभी। वैकृत मिश्र में विभक्ति वाले हैं क्या अविभक्ति वाले हैं? विभक्ति वाले ही है, परंतु वो सदाकाल तो नहीं होगे, क्योंकि वैकृत मिश्र ये जो मार्गणा है वो सांतर मार्गणा है। हर समय कोई ना कोई उसमें जीव हो ये बात नहीं बन सकती। तो कहते हैं वैकृत मिश्र का योगी मोहनी विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 12 मुहूर्त है। हमने काल कितना देखा था? वैकृत मिश्र का जघन्य काल नाना जीवों की अपेक्षा और उत्कृष्ट काल। हाँ और जघन्य अंतर्मूर्त है ना। कोई जीव वैकृत मिश्र में आता है तो लगातार अंतर्मूर्त तो रहेगा उसमें। तो नाना जीवों की अपेक्षा काल की बात चल रही है। अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के बाद वहां अंतर पड़ सकता है और लगातार कोई ना कोई आते ही रहेगा। तो अभी हमने पढ़ा था ना पल्ले के असंख्यात भाग काल का, काल की बात थी, अब यहां अंतर की बात है। अंतर कम से कम कितना होगा? एक समय के लिए कोई भी जीव नहीं है उसमें और फिर कोई ना कोई जीव उत्पन्न हुआ देवया नरक में। हाँ देव और नारकियों का मिलकर अंतर देखना। अकेले देवों में और अकेले नारकी में 24 मुहूर्त का होता है और दोनों में मिलकर लेंगे तो 12 मुहूर्त का अंतर पड़ता है। उत्कृष्ट यानी 12 मुहूर्तों में कोई ना कोई जीव देवों में और नारकियों में पैदा होगा ही होगा। 24 का होता है, अलग अलग लेंगे तो उत्कृष्ट। हाँ काल और अंतर में गड़बड़ी होती। काल में क्या है? एक जीव की अपेक्षा काल पहले समझो। कोई जीव वैकृत मिश्र का योग में आया कितने काल तक रहेगा वहां पर? हाँ, पर्याप्त जब तक नहीं होता तब तक वो वैकृत मिश्र में रहेगा। अब हमको नाना जीवों की अपेक्षा काल देखना है तो कोई ना कोई जीव उसमें लगातार है जब तक अंतर नहीं पड़ता है ऐसा। यानी अंतर एक समय घटित करना है ना, तो अंतर एक काल नाना जीवों की अपेक्षा काल हम देख रहे थे वैकृत मिश्र का। तो कोई जीव उसमें आया है तो कितने काल तक रहेगा? एक जीव आए, दो आए, दस आए, 25 आए, अंतर मुहूर्त तक जब तक वैकृत मिश्र का योग समाप्त नहीं होगा तब तक तो रहेगा उसमें। तो मिनिमम उतना काल रहेगा कि सभी एक साथ आए हैं और वैकृत मिश्र का काल बिताकर चले जाएंगे और उसमें अंतर पड़ेगा। और कोई ऐसा भी होता ना लगातार आते रहे आते रहे आते रहे, अपना अपना काल पूरा करते जाए, उसके काल पूरा होने के पहले और कोई आया, अंतर पड़ा ही नहीं, तो पल्ले का संख्या था आपका। अब यहां कहते हैं अभी यहां हम अंतर की बात कर रहे हैं। तो कोई उसमें उत्पन्न न हो ऐसा जब बनता है तो मिनिमम काल एक समय और अधिक से अधिक अंतर 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त में कोई ना कोई उत्पन्न होगा ही वहां उसमें। आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी मोहनीय विभक्ति वाले उनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक। ये नाना जीवों की बात चल रही है। कोई जीव आहारक मिश्र आहारक कायोगी नहीं था और फिर दोबारा कोई ना कोई आहारक करता है तो जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कितना है? वर्ष पृथक्त्व। यानी वर्ष पृथक्त्व काल में कोई ना कोई मुनिराज आहारक शरीर को प्राप्त करेंगे, यानी उनके आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग पाया जाएगा। हाँ टाइम उतना ही उनका अंतर जो है वो उतना ही है वर्ष पृथक्त्व। हमने एक जीव की अपेक्षा अगर हम देखेंगे आहारक मिश्र कायोग का या आहारक कायोग का अंतर मत। जैसे आहारक कायोग में तो समझना आसान है, आहारक कायोग में से मनोयोगी होगा फिर आहारक कायोगी होगा तो भी अंतर घटित होगा। या आहारक मिश्र का अंतर कैसे घटित करना एक जीव की अपेक्षा? हाँ देखो आहारक मिश्र में से आहारक का योग हुआ, फिर वो अंतर्मुद वापस आए मूल शरीर में आए, और फिर अंतर्मुद में फिर आहारक का योग किया। हाँ एक अंतर्मुद में कर सकते हैं। दो बार की तो बात आती है ना शास्त्र में, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि इन मार्गणाओं का जो जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल है, कौन सी मार्गणा, आहारक का योगी की और आहारक मिश्र की, वही यहाँ इन मार्गणाओं की अपेक्षा मोहिनी विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल होता है। अब अपगत वेदियों में मोहिनी विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय, अपगत वेदी और मोहिनी विभक्ति, पहले हमें गुणस्थान सोचना है कौन से हो गए। हाँ 9, 10, 11 कौन से उपशम श्रेणी वाले, अपगत वेदी और मोहिनी के। जैसे क्षपक में भी विभक्ति है परंतु उनमें तो अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा हमने अंतर्घटित किया था, उसमें एक जीव की अपेक्षा भले अंतर नहीं होगा परंतु यहाँ गुणस्थान कौन से लेना है हमको, विभक्ति वाले 9, 10, 11 लेना है। तो 9 और 10 में क्षपक लेना के उपशमक लेना, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देखना है तो दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो जीवों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। तथा मोहिनी विभक्ति अविभक्ति वाले जीवों का अंतर काल नहीं है, अपगत वेदी है ना, तो 13वां गुणस्थान वाला भी लेना है और सिद्ध भी लेने हैं। विशेषार्थ, 4 क्षपक गुणस्थानों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना बताया है। अतः इस अपेक्षा से अपगत वेदियों में मोहिनी विभक्ति वाले जीवों का उक्त अंतरकाल प्राप्त होता है। अपगत वेदियों में मोहिनी अविभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं कहने का कारण यह है कि संयोग केवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाए जाते हैं, जो कि अपगत वेदी होते हुए मोहिनी विभक्ति से रहित है। इतनी बात ख्याल में आई, जयबेन ख्याल में आता है जो कुछ चल रहा है, हा? याद करने की कोशिश नहीं करना है, ख्याल में आता है कि नहीं इतना ही देखना है। जब हम पढ़ रहे हैं कौन सी मार्गणा की बात चल रही है और क्या बताना चाहते हैं, बाद में हम नहीं पूछेंगे कौन से मार्गणा में क्या अंतर था क्या कुछ नहीं, बस अभी समझ में आता है यही बात है बस। अकषायियों में मोहिनी विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय, अकषायी और विभक्ति कौन सा गुणस्थान सोचो, 11वां विभक्ति है ना, तो जघन्य अंतर एक समय, ये काल नहीं बता रहे अंतर बता रहे, और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। क्यों, उपशम श्रेणी का अंतर वर्ष पृथक्त्व है और क्षपक श्रेणी का अंतर 6 महीना है। तथा मोहिनी अविभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि अविभक्ति वाले 13वें भी है और अकषाय में सिद्ध भगवान भी है, तो उनमें तो अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यथाख्यात संयतों के जानना चाहिए, यानी यथाख्यात संयत और विभक्ति वाले तो अंतर एक समय और अधिक से अंतर अधिक से अधिक वर्ष पृथक, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर बात बता रहे, और अविभक्ति वालों में अंतर नहीं है। सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों में ये संयम मार्गणा की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्रायिक संयम जो है कौन से गुणस्थान में होता है, 10वें में, मोहिनी विभक्ति वाले जीवों का उसमें अविभक्ति वाले भी होंगे कि नहीं होंगे, सूक्ष्म सांप्राय में अविभक्ति वाले नहीं होंगे विभक्ति वाले होंगे, तो क्या सर्वदा पाए जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान सर्वदा नहीं पाया जाता, न उपशम वाला न क्षपक वाला, वो अंतर जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। ये उत्कृष्ट जो अंतर बताया वो क्षपक की अपेक्षा से बताया। उपशम सम्यक दृष्टि जो उपशम सम्यक दृष्टि नहीं उपशम श्रेणी वालों में उपशम श्रेणी मानने वालों में अधिक से अधिक अंतर वर्ष पृथकत्व का होता है। उपशम सम्यक दृष्टि मौनी विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 24 दिन रात है। ये उपशम सम्यक का उत्कृष्ट अंतर जब कहते तो मुनिराज की अपेक्षा होता है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के साथ चौथा गुणस्थान किसी के न हो तो 7 दिन रात होता है, यानी 7 रात्रि और दिन जिसको हम 7 डेज कहते हैं, वीक 1 वीक। तो कोई ना कोई जीव प्रथम उपशम के साथ चौथे में आएगा ही आएगा। पांचवें गुणस्थान और उपशमिक सम्यक्त्व तो 15 दिन रात में तो कोई ना कोई आएगा ही, और ये उत्कृष्ट अंतर बताना है तो मुनि की अपेक्षा से 24 दिन रात बताए। विशेषार्थ अकषाय जीवों के 11वें गुणस्थान में ही मुनि की सत्ता पाई जाती है और उसका जघन्य अंतर एक समय तथा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। अतः अकषाय जीवों में मौनीय विभक्ति वाले जीवों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व कहा है 11वें गुणस्थान की अपेक्षा, यानी उपशम श्रेणी में वर्ष पृथक्त्व का अंतर पड़ता है। तथा अकषायों में मौनीय अविभक्ति वाले जीवों के अंतरकाल के नहीं कहने का कारण यह है कि संयोगी केवली और सिद्ध जीव सर्वदा पाए जाते हैं। मौनीय विभक्ति वाले और मौनीय अविभक्ति वाले यथाख्यात संयतों का अंतरकाल भी इसी प्रकार कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि मौनीय अविभक्ति वाले यथाख्यात संयतों के अंतरकाल का अभाव संयोग केवलियों की अपेक्षा से कहना चाहिए। यथाख्यात संयम ही तो सिद्धों में नहीं होते हैं, 14वें गुणस्थान तक ही यथाख्यात संयम होता है। तो यथाख्यात संयमी अविभक्ति वाले सदाकाल पाए जाते हैं ये जो कथन है तो किस गुणस्थान की अपेक्षा से है? 13वें। यही बात अभी हमने पढ़ी। सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना स्पष्ट ही है, वो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा ले लेना। उपशम सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन रात है, कोई भी जीव उसमें न हो ऐसा बन सकता है। अतः मौनीय विभक्ति की अपेक्षा उपशम सम्यक दृष्टियों का अंतरकाल भी इतना ही कहा है। यद्यपि जीवोत्थान के अंतराण योग द्वार में असंयत उपशम सम्यक दृष्टियों का और खुद्दाबंध में सामान्य उपशम सम्यक दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतरकाल 7 दिन रात बताया है। हम मुझे वो याद था, मैंने बताया ना 7 दिन रात में कोई ना कोई होगा ही होगा। और यहाँ उपशम सम्यक दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन रात है, इसलिए जीवोत्थान और खुद्दाबंध के उक्त कथन से इस कथन में विरोध आता हुआ प्रतीत होता है, पर इसे विरोध न मानकर मान्यता भेद मानना चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये अन्य मान्यता हो सकती है 24 दिन रात का अंतर। इस प्रकार अंतर तो अंतर, हाँ गुणस्थान की अपेक्षा लेने की जरूरत नहीं। उपशम सम्यक्त्व का अंतर जब कहेंगे तो हमने तो 7 दिन रात पढ़ा था और यहाँ 24 दिन रात, ये अन्य मान्यता है, मान्यता का भेद है। इस प्रकार अंतरानुयोग द्वार समाप्त हुआ। अभी काल और अंतर भी देखा हमने, उसके पहले क्षेत्र और स्पर्शन भी देखा था। अब भावानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनीय विभक्ति वाले जीवों के कौन सा भाव है, यानी जिनमें मोहनीय विभक्ति पाई जाती है उन जीवों के कौन से भाव है? तो औदयिक, ये औदयिक क्यों करते हैं, औदयिक औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है, यानी जहां मोहनीय विभक्ति पाई जाती है वो, हाँ ऐसे ऐसे जीवों के कौन से भाव है। और मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों के कौन सा भाव है, सुखशायी भाव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए, यानी ओग की अपेक्षा बताया उन्होंने सामान्य से, तो मार्गणाओं में घटित करना चाहिए। विशेषार्थ, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के तीन तीन भेद हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षौपशमिक, यानी औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षौपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। वैसे चारित्र में भी औपशमिक चारित्र, क्षौपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र, तथा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। अतः इनमें से जहाँ जो भेद संभव हो उसकी अपेक्षा वहाँ वह भाव समझना चाहिए। विभक्ति वालों के साथ जो कोई औदयिक भाव घटित होते हैं, कोई क्षायोश्रमिक भाव घटित होते हैं, जिस मार्गणा में जो भाव घटित होते हो वैसे वहाँ जानने चाहिए। अन्यत्र सासादन सम्य दृष्टि, पारिणामिक और सम्यक मिथ्या दृष्टि के क्षौपशमिक भाव बताया है, पर यहाँ उस विवक्षा भेद की अपेक्षा नहीं की है ऐसा प्रतीत होता है। ये दूसरे गुणस्थान में जो पारिणामिक भाव बताया है उसका अर्थ क्या है? मयंक भाई आपको पता है? हाँ देवेंद्र भाई, कौन बताना चाहता है? दर्शन, हाँ नहीं 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 अनंतानुबंधी का उदय है, अनंतानुबंधी की अपेक्षा तो औदयिक भाव है। देखो वहाँ दर्शन मोहनी की नई कोई अवस्था नहीं हो रही है, ऑलरेडी वो उपशमित है, क्योंकि प्रथम उपशम सम्यक तो के काल में अभी वो काल पूरा नहीं हुआ, काल पूरा नहीं हुआ तो उनकी अवस्था क्या ऑलरेडी हो वहाँ पर उपशमित है, अभी नई कोई अवस्था नहीं हो रही है। दूसरा गुणस्थान होने के लिए दर्शन मोहनी में कोई वेरिएशन नहीं हुआ था, वो जैसे है वैसे ही है। उदय किसका हुआ है? अनंतानुबंधी का उदय हुआ, इसलिए सासादन गुणस्थान आया है। तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा अन्य कोई नहीं, ना उदय है ना उसका नई अवस्था नहीं हो रही, उपशम क्षोपशम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहाँ उसका पारिणामिक भाव का दर्शन मोहनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव है, तो वो अपेक्षा यहाँ नहीं ली है। अतः सासादन में अनंतानुबंधी आदि के उदय की अपेक्षा और सम्यक मिथ्यादृष्टि में मिश्र आदि प्रकृति के उदय की अपेक्षा औदयिक भाव जानना चाहिए। इसी प्रकार जिस मार्गणा स्थान में उपर्युक्त भावों में से जो भाव संभव हो उसका कथन कर लेना चाहिए। जिस मार्गणा की बात है उस अपेक्षा से वहाँ उस भाव की कथन होगा, ये चारों में से। इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ। भावानुगम में ये जो पर्याय रूप भाव है ना चार, उसकी चर्चा है यहाँ पर। सासादन में जो पारिणामिक का है ना, तो वहाँ अन्य कर्मों का तो उदय चल रहा है, वहाँ औदयिक भाव तो है ही है, क्षौपशमिक भाव भी है, क्योंकि वहाँ मिथ्या ज्ञान चल रहा है, तो उसकी अपेक्षा से कुमति कुश्रुत भी है वहाँ पर, तो वो तो उसका क्षौपशमिक भाव है। तो अन्य भी जो वहाँ घटित हो रहे वहाँ तो घटित हो गए, परंतु पारिणामिक भाव यहाँ अलग से सात साधन में नहीं बताए, ये बात बताना चाहते हैं। अब ये अल्प बहुत्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा ने सामान्य में कथन करने में मोहनीय अविभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, और मोहनीय विभक्ति वाले जीव इनसे अनंत गुणे हैं। तो ये कथन सिद्धों को इसमें लेना कि नहीं लेना? लेना, सभी जीवों में ये मुख्य कथन हुआ कि अविभक्ति वाले थोड़े हैं और विभक्ति वाले अनंत गुणे हैं। इसी प्रकार काय योगी, काय योगियों में अविभक्ति वाले थोड़े हैं और विभक्ति वाले अनंत हैं। तो काय योगी अविभक्ति वाले कौन से है जीव? बारह चौदहवें को नहीं लेना, बारहवा और तेरहवा का योग है ना वहाँ पर, और अन्य सारे काय योगी हैं भी वो अनंत में चले जाएंगे। औदारिक काय योगी यही कथन होगा वहाँ पर, योग नहीं है ना चौदहवें में, काय योग की बात चल रही है। औदारिक मिश्र काय योगी वो भी एक समय वाले लेना, वो कम हो गए जीव और बाकी तो अनंत है। कार्मण काय योगी में भी ऐसा ही, अचक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी और अविभक्ति वाले कौन है, बारहवें वाले, और बाकी सभी विभक्ति वाले, वो तो अनंत हो गए। भव्य और अविभक्ति वाले बारहवा तेरहवा चौदह, और बाकी अनंत। आहारक और अविभक्ति वाले बारह और तेरह, वो तेरहवें के वो अनाहारक तीन समय छोड़कर, और बाकी अनंत। अनाहारक और अविभक्ति वाले, हाँ तेरहवें के तीन समय चौदहवें और सभी सिद्ध अनाहारक, और बाकी ही अनाहारक जो हो गए विग्रह गति वाले वो सब अनंत में चले जाएंगे। विशेषार्थ, यद्यपि मोहनीय अविभक्ति वाले अनाहारक जीवों में अयोग केवली और सिद्धों का भी ग्रहण हो जाता है, तो भी मोहनीय विभक्ति वाले अनाहारक जीव इनसे अनंत गुणे हैं। ऐसा हमें लगेगा कि वहां तो सिद्ध सभी अनंत है और अविभक्ति वाले केवल विग्रह गति वालों में हो गए, वो भी अनंत है, उससे अनंत गुणे हैं। शेष कथन सुगम है। अब जहां जहां ये कथन होता है कि ये अविभक्ति वाले थोड़े हैं और बाकी अनंत गुणे हैं, उनकी मार्गणाएं बताई। अब मनुष्य गति में, मनुष्यों में मोहनीय अविभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं और मोहनीय विभक्ति वाले जीव इनसे कितने, अभी अनंत का नहीं है, अभी असंख्यात गुणे हैं कहा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त कॉमा लगाना, त्रस त्रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी में तो हमने अनंत गुणा का बात की थी, अब ये जो ऐसी मार्गणा है ये असंख्यात गुणा हो गए। क्यों, चक्षुदर्शनी और अविभक्ति वाले कहाँ है, बारहवें गुण स्थान में, और चक्षुदर्शनी और विभक्ति वाले 1 से 11 जो है, और उसमें चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय है, खाली 1 से 11 गुणस्थान कहेंगे तो अनंत हो जाएंगे। चक्षुदर्शन किसके में होता है, चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, वो जीव कितने हैं, असंख्यात है, इसलिए असंख्यात गुणा, ये थोड़े हैं और वो असंख्यात गुणे हैं। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगियों में भी यही होगा, क्योंकि वचन योग, मनोयोग वो तो असंख्यात जीवों में होगा। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये भी सम्यक दृष्टि जो है, मति श्रुत अवधि ज्ञान के साथ अविभक्ति वाले बारहवे कम है और बाकी वो उससे असंख्यात गुणे हैं। चक्षुदर्शनी पर अभी हमने घटित किया था, अवधि दर्शनी भी वही है, शुक्ल लेशा वाले, शुक्ल लेशा और अविभक्ति बारह और तेरह, और विभक्ति वाले वो सारे बाकी। और संगी जीवों में भी ऐसा ही कथन है, संगी में तो बारवा एकल, अकेला एक बारवा गुण स्थान लेना, और विभक्ति वालों में बाकी सब संगी जीव वो असंख्यात गुणा है। पहला जो हमने पहली लिस्ट देखी थी उसमें थोड़े हैं और अनंत गुणे हैं, और दूसरी लिस्ट में असंख्यात गुणे हैं। विशेषा चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय अभी मैंने बताया ना, दोनों लेना, पर्याप्त भी लेना और अपर्याप्त भी लेना, हाँ 1 से 11 गुणस्थान, उसमें प्रमाण असंख्यात गुणा है, यही बात है। ये जितनी मार्गणाएं ऊपर कही है उनमें प्रत्येक का प्रमाण असंख्यात है, पर इनमें मोहनीय अविभक्ति वाले जीव संख्यात ही होते हैं, अतः इन मार्गणाओं में मोहनीय अविभक्ति वालों से मोहनीय विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे कहे हैं। ये ख्याल में है ना, वहां तो अनंत थे और यहाँ असंख्यात में होते हैं। मनुष्य पर्याप्त और योनिमति मनुष्यों में मौनीय अविभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं और मौनीय विभक्ति वाले जीव इनसे संख्यात गुने। जब सामान्य मनुष्य कहा था तो सामान्य मनुष्य असंख्यात होते हैं, अब अपर्याप्त भी आए ना उसमें, तो सामान्य जब गे लेते हैं तो उसमें वो अभिव्यक्ति वाले विभक्ति वाले दोनों घटित होते हैं। अब यहाँ मनुष्य इतनी बात लेना या पर्याप्त मनुष्य लेना है या मनुष्य नहीं लेना है, तो वो ओरिजिनली संख्यात होते हैं और उनमें से गिने चुने हैं वो अविभक्ति वाले होंगे, इसलिए वहाँ संख्यात गुणा का वो प्रोपोर्शन होगा वहाँ पर। इसी प्रकार मनपरे ज्ञानी और संयत जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि वो संख्यात होते हैं और उनमें से थोड़े से है वो बारहवें में होंगे। अभी संयत में जो लेना है बारहवा तेरहवा चौदहवा ले सकते, संयत है वो, और बाकी संयत होते हुए विभक्ति वाले वो उनसे संख्यात गुणे होंगे। छठे से लेकर जो करोड़ों की संख्या होगी फिर भी वो संख्यात में है ना। हाँ। अपगत वेदी जीवों में मौनीय विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं। अब यहाँ उल्टा, अपगत होते हुए विभक्ति वाले नौवा गुणस्थान, दसवा गुणस्थान और ग्यारहवा, नौवे दसवें में क्षपक लेने के उपशमक लेने दोनों लेने, अभी ख्याल में आने लगा। और यहाँ अपगत वेदी में मौनीय अविभक्ति वाले कौन कौन लेने हैं, तेरवा चौदह और सिद्धों को भी लेना, बारहवा तेरवा चौदहवा और सिद्ध, तो अभी प्रोपोर्शन उल्टा हो जाएगा। अपगत वेदी वाले में विभक्ति वाले अविभक्ति वाले ज्यादा, अविभक्ति वाले ज्यादा और विभक्ति वाले कम। अपगत वेदी जीवों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं और मोहनीय मोहीय हुआ है मोहनीय ही के बदले ह नहीं लिखना, अविभक्ति वाले जीव इनसे अनंत गुणे हैं। इसी प्रकार अकषायी सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, यानी भले वो सम्यक दृष्टि असंख्यात है कौन से विभक्ति वाले, परंतु अविभक्ति वाले सम्यक दृष्टि कितने हैं, अनंत है, जो सिद्धों को लेना तो अनंत गुणा घटित होगा उसमें। विशेषार्थ अपगत वेदी आदि जीवों में मौनीय अविभक्ति वाले जीवों से बारहवें गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक सबका ग्रहण किया है, इसलिए उक्त मार्गणाओं में मौनीय विभक्ति वाले जीवन से मौनीय अविभक्ति वाले जीव अनंत गुणे प्राप्त होते हैं। यथाख्यात संयतों में, अभी यथाख्यात संयम कहेंगे तो सिद्धों को नहीं लेना है, तो यथाख्यात संयम होते हुए विभक्ति है ऐसे कितने हैं जी, कौन से गुणस्थान वाले, ग्यारह, और यथाख्यात संयत है और अविभक्ति वाले हैं कौन से ज्यादा हो गए मालूम नहीं। तेरहवे में तो हमेशा ही हो गए और वो तो वहां तो लाखों होते ना, लाखों केवली विराजमान है हम देखते। तो देखो यथाख्यात संयतों में मौनीय विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, यानी ग्यारहवा के लेना। हाँ। और मौनीय अविभक्ति वाले जीव इनसे संख्यात गुणे हैं, संख्यात गुणा में है। तो ग्यारहवे वाले कितने हो गए उत्कृष्ट में, उत्कृष्ट भूलने की बात थोड़ी है, 299 कहो या 304 कहो, उसमें अलग अलग, यहाँ 608 गए थे वहां उनके आधे होते हैं। हाँ, परंतु हमें पढ़े थे तो उसमें 299 आई थी ना संख्या। हाँ, उसमें होते हैं, यानी 304 और ये 299 से लेकर वो इतने भेद होते हैं उसमें, तो वो संख्यात गुणा में ही होगा, ये लाखों भी हो गए तो भी वो संख्यात गुणा कहलाएंगे। इन उपर्युक्त मार्गणाओं को छोड़कर शेष मार्गणाओं में अल्प बहुत्व नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनों में से एक पद ही पाया जाता है। अल्प बहुत्व कब कहेंगे, विभक्ति वालों से अविभक्ति वाले कितने गुने हैं या अविभक्ति वालों से विभक्ति वाले कितने गुने, जहां केवल विभक्ति वाले ही है वहां तो कोई अल्प बहुत्व नहीं होगा ना, सर्व ही जीव है उसमें, ऐसा कहेंगे हम। जैसे नरक गति है तो नरक गति में सभी विभक्ति वाले ही हैं, तो उसमें अल्पभूतों का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार मूल प्रकृति विभक्ति समाप्त हुई। अब मूल प्रकृतियों में तो लगा लिया, अब उत्तर प्रकृति की बात चालू हो जाएगी। उत्तर प्रकृति विभक्ति दो प्रकार की है, एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति और प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति। ये क्या है? हाँ, सूत्र पढ़ेंगे तो एक स्थान किसको कहना और एक एक प्रकृति किसको कहना। हाँ, अलग अलग प्रकृतियों का कथन करेंगे तो उसको एक एक प्रकृति कहेंगे, और स्थान यानी एक साथ कितनी उत्तर प्रकृति एट ए टाइम होती है उसको स्थान कहेंगे। अब हम ऊपर सूत्र पढ़ेंगे, तदो उत्तर पयड़ी विहत्ति दुह्या, एक एक उत्तर पयड़ी विहत्ति चेव पयड़ी ठाण उत्तर पयड़ी विहत्ति चेव। उत्तर प्रकृति विभक्ति दो प्रकार की है, एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति और प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति, जिसमें हमने देखा ना कितने स्थान है, यह सत्ता की अपेक्षा है। देखो ये जो स्थान कहते हैं ना उत्तर प्रकृति के स्थान, उदय की अपेक्षा भी हो सकते हैं, बंद की अपेक्षा भी हो सकते हैं और सत्ता की अपेक्षा भी हो सकते हैं। तो यहाँ प्रकृति विभक्ति और अविभक्ति में, विभक्ति में तो हमें सत्ता लेनी है, तो हमने जैसे 28 प्रकृति का स्थान है, 27 का है, 26 का है, उसको वो स्थान कहेंगे, प्रकृति के स्थान कहेंगे। हमने प्रस्तावना में पढ़ा था इसको, अब यहाँ तो विस्तार से आएगी बात। जिसमें मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का अलग अलग कथन किया जाता है उसे एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति कहते हैं। ये प्रत्येक प्रकृति का अलग अलग कथन होगा। अब यहाँ एक साथ एट ए टाइम कौन कौन सी हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसको स्थान कहेंगे। तथा जिसमें मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतिक, प्रकृति के यानी प्रकृति वाला स्थान, 27 प्रकृतिक और 26 प्रकृतिक आदि स्थानों में कौन सा शब्द लगाया, और सत्व स्थानों का, क्योंकि मोहनी के उदय स्थान भी होते हैं अलग, एक साथ कितने मोहनी कर्म बनते हैं। अब मैं पूछूं आपको, मिथ्यात्व दशा में बंद कितने का होगा एट ए टाइम? हाँ, मिथ्यात्व 16 कषाय है, और निरंतर बंदी और बताओ दो, भय जुगुप्सा 19 तो है, और उसके साथ और क्या क्या बंदेगी? हाँ, तीन वेद में से एक वेद, और हस्यरति या शोक जुगुप्सा एक युगल, ये तीन, तो 19 और 3 22 प्रकृति का बंद होगा। उसमें भंग अलग अलग हो गए, भंग कौन से, ऑप्शनल कहाँ होगा, तीनों वेद में से कोई एक वेद होगा, या हास्यरति या शोक रति होगी, उसमें जो कॉम्बिनेशन हो गए उतने हो गए, उसको भंग कहेंगे। परंतु स्थान कितने का बंदेगा, 22 का। अब मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय के स्थान, अभी थोड़ा हाँ रुको रुको, हाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय के स्थान कितने हो गए, अभी आपको तो पूछना नहीं है ना, आपको याद है? हाँ, आपको नहीं मालूम है। देखो 9 का स्थान होगा, 10 का भी होगा ना मैक्सिमम, कैसे गिनना? मिथ्यात्व गुणस्थान में मोहनी के उदय कौन कौन से हैं? एक मिथ्यात्व का उदय है, 4 कषायों के, 4 प्रकार के क्रोध, कौन सा, अनंतानुबंधी क्रोध या मान या माया या लोभ, तो उदय तो एक किसी का होगा, क्रोध का या मान का या मान, तो ये 4 में से किसी एक का होगा। एक मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ में से 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोभ, फिर वेद है, एक कोई वेद का उदय होगा, हास्यरति या शोक रति, इसमें से एक एक का होगा। अब भय और जुगुप्सा में क्या होता है, हाँ किसी को दोनों का उदय है, किसी को अकेला भय का है, किसी को अकेला जुगुप्सा का है, किसी को दोनों का भी नहीं है। अब इसमें कितने का उदय हो सकता है किसी जीव को, ऐसा गिनना है, हर एक में से एक एक उसको गिनना, एक और चार पांच, एक छः दो आठ और दस, दस का उदय हो सकता है या फिर नौ का उदय हो सकता है, और फिर नौ, दस नौ नौ आठ। अब ये ऐसा कोई जीव है, हाँ, ये तीन किसको होगा, यहाँ अगर मैं तीन लिखूं, हाँ, ऐसा जो जीव है कि जिस जो सम्य दृष्टि था, सम्य दर्शन की अवस्था में उसने अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर दिया, तो उसकी सत्ता में अनंतानुबंधी है नहीं। अब ऐसा जीव मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व में आ गया तो अनंतानुबंधी का बंध शुरू हो गया, परंतु जब तक आवली काल नहीं बीतेगा तब तक उसका उदय नहीं होगा, तो तब तक उसकी ऐसी पोजीशन होगी। हाँ, तो उसमें से नौ आठ आठ सात, ये सात वाला भंग उसमें पाया जाएगा। अब ये अपना अभी का विषय नहीं है, अभी यानी उदय स्थान भी अलग होते हैं, बंध स्थान भी अलग होते हैं, और यहाँ जो हम सत्व स्थान देख रहे हैं, सत्व स्थान देखो, बंध और उदय के स्थान गुण स्थान के अनुसार बदलते हैं, पर सत्ता के स्थान नॉट नेसेसरी, क्योंकि जीव ग्यारहवें गुण स्थान में जाता है, वहां ना बंध है ना उदय है, परंतु सत्ता 28 की पड़ी है, ऐसा भी जीव होगा ना वहां 28 की सत्ता वाला, तो ये यहाँ सत्व स्थान गिना रहे, ये बात कहनी है। अभी चौथे गुण स्थान में गया, वहां एक मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है और फिर अनंतानुबंधी का भी नहीं है, तो वहां ऐसे उदय में वेरिएशन हो सकेगा, परंतु सत्ता तो वहां भी मिथ्यात्व की पड़ी है, सम्यक मिथ्यात्व और उसकी सम्यक प्रकृति की भी पड़ी है, तो उसको यहाँ लिखना है हमको सत्ता के स्थान में, सत्व स्थान कहेंगे उसको। अब यहाँ देखते हैं कि 28, 27 और 26 आदि, आदि में वो सब एक तक गिनेंगे, हमने प्रस्तावना में देखे न, हाँ। ये अभी विस्तार से कथन आएगा कहाँ कौन से होते हैं, यही तो विषय है इस अनुयोग का, प्रकृति का, प्रकृति स्थान जहाँ कहाँ है, उसे प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति, ये इतना लंबा चौड़ा नाम है उसका, प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति, और पहला कौन सा देखा था, एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति, इस प्रकार उत्तर प्रकृति विभक्ति दो प्रकार की ही होती है, क्योंकि इनके अतिरिक्त यानी इनके अलावा और किसी तीसरी विभक्ति का पाया जाना संभव नहीं है, या तो एक एक प्रकृति की बात बताएंगे या एक साथ कितनों का स्थान होता है उसको बताएंगे। अब आगे का सूत्र ऊपर से पढ़ेंगे, तथ्य एगेग उत्तर पैड़े विहत्ति इमानी अनियोगत दाराणी, इमानी यानी ये इतने अनुयोग द्वार है, कौन कौन से, तम जहां वे इस प्रकार है, एक जीवेण स्वामित्वम कालो अंतरम, जैसे हमने पहले भी देखा था एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल अंतर, नाना जीवे ही भंग विषयानुगमो परिमाणानुगमो खेतानुगमो पोषणानु पोषण ने स्पर्श, हाँ, कालानुगमो अंतरानुगमो सन्नियासो सन्निकर्षण, एक साथ एक कितने होते हैं, किसके साथ कौन सी प्रकृति होती है वगैरह, अप्पा बहुएत्ति, नीचे उसका अर्थ लिखा है देखो, उक्त दोनों भेदों में से एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति के ये 11 अनुयोग द्वार हैं, वे इस प्रकार है, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयानुगम परिमाणानुगम यानी प्रमाण, क्षेत्रानुगम स्पर्शनानुगम कालानुगम अंतरानुगम सन्निकर्ष और अल्पबहुत्व। अब विस्तार से एक एक को बताएंगे, इस प्रकार एक एक प्रकृति विभक्ति के ये 11 अनुयोग द्वार होते हैं। शंका, उच्चारणाचार्य ने एक एक प्रकृति विभक्ति के समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तना किसको कहते मालूम है, कथन करना, प्ररूपणा जिसको हम सत प्ररूपणा भी कहते हैं, वो है ऐसा बताना, इसको कहेंगे समुत्कीर्तना। सर्व विभक्ति, नो सर्व विभक्ति, उत्कृष्ट विभक्ति, अनुत्कृष्ट विभक्ति, जघन्य विभक्ति, अजघन्य विभक्ति, सादी विभक्ति, अनादि विभक्ति, ध्रुव विभक्ति, अध्रुव विभक्ति, तथा एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल अंतर और सन्निकर्ष, तथा नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागा भागानुगम, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भावानुगम और अल्पभूतव, इस प्रकार ये 24 अनुयोग द्वार कहे हैं। पर यति ऋषभ आचार्य ने 11 ही अनुयोग द्वार कहे हैं, अतः इन दोनों व्याख्यानों का परस्पर में विरोध क्यों नहीं है? स्वयं वीरसेन आचार्य ने शंकाकार के मुंह में ये शंका डाली है, ये बताने के लिए कि उच्चारणाचार्य ने इसमें से ही 24 अनुयोग द्वार बनाए। समाधान, इसमें विरोध कोई नहीं है, वो अधिक विस्तार से समझाए हैं, इतनी बात है। यद्यपि यति ऋषभ आचार्य ने 11 और उच्चारणाचार्य ने 24 अनुयोग द्वार कहे हैं, तो भी इनमें परस्पर में विरोध नहीं है, क्योंकि यति ऋषभ आचार्य का कथन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है, द्रव्यार्थिक यानी सामान्य से कथन है, और उच्चारणाचार्य का कथन पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है, उसमें और भेद कर करके समझाने के लिए उन्होंने और विस्तार से समझाया है, अतः उक्त दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है। इसलिए उनके अभिप्राय अनुसार 11 अनुयोग द्वार होते हैं। यहाँ विभक्ति में क्या क्या लागू होता है उस विभक्ति में क्या लागू होता है मोहिनी की विभक्ति की अपेक्षा उसमें वो बताए। अभी जा क्या है जितने क्योंकि जहाँ जितने पहले परंपरा से जो चले आए हैं वहाँ उतने बताएंगे, क्योंकि इसमें कितने ही हम और भी ज्यादा भेद करेंगे तो ये विषय समझने के लिए ही करते हैं। पर्यायार्थिक नय में कोई लिमिट नहीं कि इतने ही करो, आप और भी करो उसमें। नवम नवम होता वो तेजोज और वो उसमें तो संख्याओं में बताना था ना, वे संख्या कौन सी है क्या है, हाँ चार से भाग देते हैं तब क्या बचता है, उसकी अपेक्षा लिया था, उसकी यहाँ चर्चा नहीं की है। यहाँ अश्विन में कहते अच्छा है, नहीं तो और बढ़ जाता विषय। अब ये जो हम इन्होंने 24 बनाए और उन्होंने 11 बनाए, तो कौन से अनुयोगों का कौन से उसमें गर्भित है वो ये बताएंगे, ये किसमें से उन्होंने भेद किए वो बात बताएंगे। अब किस अनुयोग द्वार में संग्रह किया है, संग्रह ने वो भेद किसमें से निकाले उन्होंने, इसका कथन करते हैं। यद्यपि समुत्कीर्तन अनुयोग द्वार में प्रकृतियों का अस्तित्व बतलाया जाता है, तो भी उसे अलग नहीं कहना चाहिए। ये प्रकृति इतनी है, 28 प्रकृतियां है, ये कह देना ही वो समुत्कीर्तना है। तो कहते जब उसके बारे में इतनी सारी बातें बता रहे तो है ये तो सिद्ध ही होता है, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वामित्व आदि अनुयोगों के कथन के द्वारा ही वो स्वामित्व बताएंगे, काल बताएंगे, अंतर बताएंगे, तो उसमें तो ये सिद्ध ही होता है, इसका प्रत्येक प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जिन जिन प्रकृतियों की बात यहाँ बताने जा रहे हैं वो है तभी तो उसका कथन करेंगे। अतः जाने हुए अर्थ का कथन करने में कोई फल नहीं है, तथा सर्व विभक्ति, नो सर्व विभक्ति, उत्कृष्ट विभक्ति, अनुत्कृष्ट विभक्ति, जघन्य विभक्ति और अजघन्य विभक्ति का भी अलग से कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामित्व, सन्निकर्ष आदि अनुयोग द्वारों के कथन से जिस शिष्य ने प्रकृतियों की संख्या का ज्ञान कर लिया है उसे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट तथा जघन्य और अजघन्य प्रकृतियों की संख्या का ज्ञान हो ही जाता है। कहाँ कितनी संख्या है प्रकृति में, 28 है का कितनी है सत्ता, तो ये अधिक है क्या कम है, इसका ज्ञान तो हो ही जाता है, ये कहना चाहते हैं। प्रकृतियों की संख्या गिनना है ना, कहीं 28 की सत्ता है, कहीं एक की सत्ता है, तो उससे तो ज्ञान हो ही जाता है, ये बात बताना चाहते हैं। तथा सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव अधिकारों का भी पृथक कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल अनुयोग द्वार और अंतर अनुयोग द्वार के कथन करने पर उसका ज्ञान उनका ज्ञान होता है। यानी पहले ज़्यादा थी सत्ता और अभी कम हो गया, पहले कम थी अभी ज़्यादा हो गई, तो समझ में आता है। तथा भागा भाग अनुयोग द्वार का भी पृथक कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसे अल्प बहुत्व का ज्ञान हो गया है उसे भागा भाग का ज्ञान हो ही जाता है। यानी जो पहले 28 सत्ता वाला था मिथ्यात्व दशा में और अभी 10वें में एक सत्ता वाला रह गया, तो कितवे भाग प्रमाण है वो तो ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार भाव अनुयोग द्वार का भी पृथक कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह के उदय से मोह प्रकृति विभक्ति होती है, यह बात उपदेश के बिना भी जानी जाती है। ये मोह के उदय से होते ये सारे औदयिक भाव वाले हैं, ये भाव बात ख्याल में आती है। इस प्रकार शेष 13 अनुयोग द्वार 11 अनुयोग द्वारों में ही संग्रहित हो जाते हैं, अतः 11 अनुयोग द्वारों का कथन 24 अनुयोग द्वारों के कथन के साथ विरोध को नहीं प्राप्त होता है। उसमें कोई विरोध नहीं है, वो बात नहीं बताने से भी ख्याल में आ जाती है। चूर्णी सूत्र एदेशु अनियोग द्वारेषु परु विदेशु तदो एगेग उत्तर पैड़ी विहत्ति समत्ता। इन 11 अनियोग द्वारों के कथन करने पर एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति नामक अनियोग द्वार समाप्त हो जाता है। उन्होंने इतनी बात बताई, एक एक प्रकृति विभक्ति उसके नाम वगैरह नहीं बताए, तो कहते अब मंद बुद्धि जनों पर, हमारे जैसे लोगों पर अनुग्रह करने के लिए उच्चारणाचार्य के द्वारा किए गए व्याख्यान को यहाँ कहते हैं। वीरसेन स्वामी ने दोनों की बात यहाँ बताई है, चूर्णी सूत्र की बात तो बताई है, उच्चारणाचार्य ने जो उसमें विस्तार कथन किया है उसको भी यहाँ लिया है। क्योंकि इस काल में बुद्धिमान मनुष्य नहीं पाए जाते, क्या उनके काल में नहीं पाए जाते तो अब क्या होगा। और जितने भी बुद्धिमान है वो बुद्धि कहाँ लगी वो जानना चाहिए क्या। वह इस प्रकार है, उस एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति के कथन में ये 24 अनुयोग द्वार जानने चाहिए। अभी जो उन्होंने बताए थे ना, समुत्कीर्तना, सर्व विभक्ति, नो सर्व विभक्ति, उत्कृष्ट विभक्ति, अनुत्कृष्ट विभक्ति, जघन्य विभक्ति, अजघन्य विभक्ति, सादी विभक्ति, अनादि विभक्ति, ध्रुव विभक्ति, अध्रुव विभक्ति, तथा एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अंतर, सन्निकर्ष और नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागा भागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम, इसकी चर्चा भी हम कल करेंगे। तो यहाँ तो पहले तो उन्होंने बता दिया कि 11 में ये 24 अंतर्भूत है, फिर ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, तो उच्चारणाचार्य ने जो कुछ समझा है उसको वीरसेन स्वामी यहाँ समझाएंगे, बताएंगे, इसकी कल से हम चर्चा करेंगे आगे। जावाणी के ज्ञान